मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और कुछ दूसरी खबरों के बारे में बातें करूंगा। शुरुआत में करना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। इनके बारे में बहुत सी बातें अखबारों में आ रही हैं, पूरे देश में इस घटना को लेकर के चर्चा है, कोर्ट में मामला चल रहे हैं, विशेषज्ञ अपने अपने ढंग से अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं आर्टिकल के रूप में भी, एडिटोरियल के रूप में भी, और आप उसे पढ़ ही रहे होंगे यदि सच में आप सिविल सर्विस की सही तैयारी कर रहे होंगे तो। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण उभर कर आ रहा है अभी यह बताना मुश्किल है, लेकिन चूंकि यह घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है तो मेरी सलाह है कि इसे आप अलग अलग कोणों से देखने की कोशिश करते रहें। वे कोण कौन से होंगे? डेफिनेटली 2-3 कोण बकायदे निर्धारित किए जा सकते। पहला कोण तो सीधे सीधे संवैधानिक व्यवस्था का है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है। दूसरा जो कोण हो जाता है वो लॉ एंड ऑर्डर का हो जाता है, और जो तीसरा कोण है वो राजनीतिक नैतिकता का हो जाता है, जिसमें आप आचार संहिता को भी शामिल करके चल सकते हैं, या चाहे तो आप जो चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है उसे अलग से भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फिलहाल कोई भी स्थिति बन नहीं पाई है, लेकिन फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को जानने चाहिए, क्योंकि ये सब पड़ाव है, ये माइलस्टोन है इस घटना की जर्नी के, यदि आप इन माइलस्टोन से अच्छी तरह से परिचित रहेंगे तो डेफिनेटली इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उत्तर देने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने जो भी उन पर आरोप लगाए हैं उस आरोप के तहत वो जेल भेजे गए। एक बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आप उत्तर भी दे लेंगे, वो ये है कि ईडी की अभी बहुत चर्चा हो रही है, अलग अलग तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कभी कभी न्यायालय भी उसके विरुद्ध अपनी एक जो नाराजगी है वो व्यक्त कर देते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये जो ईडी है ये किस मंत्रालय के अधीन है या पूरी तरह से स्वतंत्र है? नंबर एक होता है कि अगर कोई इस तरह की संस्था किसी मंत्रालय के अधीन हो तो हो सकता है उस मंत्रालय के किसी डिपार्टमेंट के अधीन हो, क्योंकि देखिए मंत्रालय तो एक बहुत बड़ी संस्था हो गई, संस्था कह रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो अलग अलग विषयों को डील करते हैं। जैसे जो शिक्षा मंत्रालय है, जो पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, तो आप देखिए कि उसका एक विभाग है जो शिक्षा से संबंधित है, एक विभाग पता लगा कि युवा मामलों से संबंधित है, एक विभाग पता लगा कि खेल से संबंधित है। तो दो बातें आपको जाननी चाहिए और आप जान भी रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ईडी है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और दूसरा उस मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है। यदि कुछ ऐसा है तो इस पर आप थोड़ा सा होमवर्क करें। दोस्तों, अभी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो जेल में हैं। एक बात जो अभी काफी बहस का मुद्दा बनी हुई है वो ये है कि वो जेल से सरकार चलाने की बात कह रहे हैं और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने सरकार चलाना शुरू भी कर दिया है, आदेश देने शुरू कर दिए हैं। पहला प्रश्न उठता है कि ये संवैधानिक दृष्टि से कितना सही है, या यूं कह लीजिए कि कानूनी दृष्टि से कितना सही है। अगर हम अभी की कुछ घटनाओं को लें तो देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर उनकी ही पार्टी के एक नेता मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री कभी कभी गिरफ्तार किए गए हैं और इसके बाद गिरफ्तार होते ही वो त्याग पत्र दे देते हैं और इसके बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल जी ने त्याग पत्र नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जेल से ही बकायदे अपनी सरकार चलाएंगे। चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, इस पर विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि अंततः क्या फाइनल होता है, कुछ न कुछ तो डेफिनेटली निकल कर आएगा ही। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी ने टिप्पणी की और बाद में अमेरिका ने भी टिप्पणी की। इनकी टिप्पणी के आधार ये रहे, जैसे कि जर्मनी ने जो टिप्पणी की उसका यही था कि भाई ये डेमोक्रेसी के दौरान जबकि चुनाव होने वाले हैं आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे इस तरह से हिरासत में ले सकते हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने बकायदे जर्मनी के अधिकारी को बुलाया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिका ने भी जब कुछ इसी तरह की बात कही तो अमेरिका के भी अधिकारी को बुलाया गया और आपत्ति दर्ज कराई गई और वार्निंग भी दी गई, और फिर दर्ज कराने के बाद भी अमेरिका ने फिर एक और आपत्ति छेड़ दी। अमेरिका ने जो दूसरा आरोप लगाया वो ये कि कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं वो आपने सील कर दिए हैं, तो ऐसे में वो चुनाव प्रचार कैसे कर सकेगी, फिर से उन्होंने आरोप लगा दिया, इस पर भी आपत्ति दर्ज होगी। दोस्तों, सच बात यह है कि जो सॉवरेन कंट्री होती, जो संप्रभु राष्ट्र है और हम संप्रभु राष्ट्र हैं, वो किसी भी अपने आंतरिक मामलों में दूसरे देशों के इस तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सकते और किया भी नहीं जाना चाहिए। जो भी एक्शन हो रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, उस पर बहस जारी है, मामले कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में बहस हो रही है, न्यायालय निर्णय ले, हमारा देश है, हम फैसले करेंगे। आप उसके बारे में टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं, यह तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक दो और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। एक जो मामला है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के एक मंत्री हैं के पोन मुडी, नाम से आपको कुछ विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन वो बकायदे एक लीडर हैं, डीएमके के नेता हैं। उन पर कुछ दोष लगाए गए, आरोप लगाए गए, और सीधी सी बात है कि आरोप लगाए जाने के बाद आप उन्हें मंत्री नहीं बना सकते। ये जो नेता है ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोष सिद्धि पर रोक लगा दी, यानी कि केवल ये आरोप है उस पर उन्होंने स्टे दे दिया, और स्टे देने के बाद उन्होंने राज्यपाल से कहा कि आप इन्हें बकायदे शपथ दिलाइए। लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई। फिर से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ कि हमने इसकी इनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है और हमने कहा है कि इन्हें शपथ दिलाई जाए, तो राज्यपाल इन्हें शपथ क्यों नहीं दिला रहे हैं, और फिर आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें शपथ दिलाई जाए, और फिर वहां के राज्यपाल को ऐसा करना पड़ा। अब आप देखिए कि राज्यपाल जो एक पद है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर काम कर रहे हैं। यहां भी आपको एक जो हमारी संघीय व्यवस्था है, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा ढीला पड़ रहा है वह दिखाई देगा, और खासकर राज्यपाल के कार्यों को लेकर के बहुत से इस तरह के विवादास्पद खबरें आती रहती हैं। खासकर राज्यपाल के इस तरह के कार्यों को लेकर के बहुत से विवादास्पद निर्णयों की खबरें छपती रहती हैं, आपको मालूम होगा, लेकिन चूंकि यह एक नई खबर है तो इसे आपको समझ लेना चाहिए। आपको यह भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं हैं जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है, राइट? और अभी बकायदे चुनाव आयोग के लिए दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है एक्ट के तहत, और एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे कैबिनेट स्तर के, और प्रतिपक्ष के नेता होंगे, राइट? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, और एक प्रतिपक्ष के नेता, लेकिन सरकार ने एक्ट बना दिया है, अब वो काम कर रही है। तो जब इस पर सुनवाई हो रही थी तो केंद्र ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और केंद्र ने कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उसकी स्वतंत्रता किसी न्यायिक सदस्य की मौजूदगी से नहीं आती, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जरूरी नहीं है कि जो अपॉइंटमेंट हो उस कमेटी में न्यायालय का कोई व्यक्ति हो, ये जरूरी नहीं है। यदि कोई संस्था संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र रहेगी, ठीक है, चलिए। लेकिन यह केंद्र सरकार की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उक्ति है जो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये वजन रखती है। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम कानून की वैधता जांच करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है उन पर हम रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी बकायदे चुनाव हो रहे हैं, तो ये जो व्यवस्था है यह व्यवस्था बाधित होगी, तो ये भी आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी जो मुझे आप सबसे डिस्कस करनी थी। हालांकि सीधे सीधे इससे क्या प्रश्न बनेंगे प्री एग्जामिनेशन के लिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, या यू कह लीजिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से, इन घटनाओं के बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।